चैप्टर 3। धीरज सुमन को ठीक से खड़ा करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, सुमन, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? क्या आपको किसी भी बात का होश नहीं है? धीरज की कड़क आवाज सुन सुमन थोड़ा सहम जाती है, फिर भी वे अपने डर को साइड रखते हुए बोली, मैं तो बस परी को उठाने जा रही थी। इतनी देर हो गई, अब तक उठी नहीं। आज इतने सालों बाद उसका भाई भी आने वाला है। इतना काम है फिर भी सो रही है। मैं अभी उसे जगा कर आती हूँ। इतना बोल वे धीरज के नज़रों से जल्दी से निकल जाना चाहती थी, इसलिए वे अपने तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगती है। पर वे कुछ और कदम आगे बढ़ा पाती, धीरज सुमन की कलाई को पकड़ अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके सुमन सीधा जा धीरज के सीने से जा लगती है, जिसे देख धीरज सुमन की गालों पर तेज बाइट करते हैं, जिसके सुमन की हल्की सी चीख निकल जाती है। सुमन की चीख को सुन धीरज कहते हैं, सुमन, इतना मत चिल्लाइए, वरना बच्चे आपकी चीख सुन उसका गलत मतलब निकाल लेंगे। अब से कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिएगा, वरना आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपको थोड़ी सी भी खरोच आई तो आपको इसके भी बड़ी सजा मिलेगी। उम्मीद है कि आज की सजा आपको याद रहेगी। धीरज जी की इतनी पागलपन भरी बातों को सुन सुमन का मुंह बन जाता है, पर वे धीरज से और सजा नहीं पाना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द धीरज से दूर जाना था, वरना उसे मालूम था कि यह पागल आदमी उसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वे अपनी मासूम आवाज में कहती हैं, ठीक है, मैं आपकी सारी बात याद रखूंगी, अब क्या मैं जाऊं? सुमन की मासूम आवाज सुन और उसे अपनी बात मानता हुआ देख धीरज उसे छोड़ देता है। वहीं धीरज के छोड़ते ही सुमन वहां से 100 की स्पीड से भाग जाती है। वहीं धीरज सुमन को फिर से इतनी जल्दी भागता देख अपने दांत पीस लेता है, क्योंकि उसे मालूम था ये औरत कभी नहीं सुधरने वाली। सुमन जब उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तो वे भी अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रुद्र, जो रूही का नाम जान, मुस्कुरा रहा था। रूही के ये बोलने पर कि अब उसे उसके करीब रहने पर घुटन हो रही है, रुद्र का पारा हाई हो जाता है और वे रूही के बालों को पीछे से पकड़ते हुए बोला, रू, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे करीब रहने से घुटन हो रही है तो किसके करीब रहने से तुम्हें सुकून मिलता है? फिर कुछ सोच अपनी खतरनाक आंखों से रूही को देखते हुए बोला, एक मिनट रू, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं जिसके करीब तुम जाना चाहती हो? रुद्र की पागलों जैसी बात सुन रूही का दिमाग खराब होने लगता है और रुद्र के बालों को पकड़ने की वजह से उसे अपने बालों में भी हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। इसलिए वे रुद्र को अपनी हल्की ग्रीन आंखों से देखती हुई गुस्से में बोली, बदतमीज आदमी, छोड़ो मेरे बालों को, मुझे दर्द हो रहा है। और ये क्या रू रू लगाकर रखता हुआ है? मेरा नाम रू नहीं रूही है, तो मुझे रू कहना बंद करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अजनबी मुझे रू कहकर बुलाए। रू कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे अपनों का है। रही बात मेरे बॉयफ्रेंड की या होने वाले हस्बैंड की, उसके तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा जिसके करीब जाने का मन करेगा मैं जाऊंगी, उसके तुम्हें क्या? तुम दूर हटो मुझसे बदतमीज आदमी, मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इतना बोल वे खुद को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वहीं रुद्र के बॉडीगार्ड्स और रुद्र का असिस्टेंट अमन जब इतनी पतली दुबली प्यारी मासूम पिद्दी सी खूबसूरत सी लड़की की इतनी लंबी जबान देखते हैं तो उन सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके बॉस, जिनसे सामने बड़े से बड़े बिजनेसमैन और माफिया अपनी जबान खोलने के पहले हजार बार सोच लेते हैं कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, वहीं ये लड़की उनके बॉस के सामने इतना सब कुछ एक सांस में ही कह दिया। लेकिन जब अमन की नज़र रूही की बातों से हटकर रुद्र के चेहरे पर जाती है तो वे डर के मारे अपना थूक निगल लेता है और मन ही मन खुद से कहता है, हे भगवान, अब इस लड़की को मेरे शैतान बॉस से आप ही बता सकते हैं। इस लड़की को क्या जरूरत थी इस शैतान के सामने इतना बोलने की? इसने इतना बोल तो दिया, पर इस लड़की को क्या मालूम कि इसने किसके सामने अपनी इतनी लंबी जबान खोली है और उसके कहे हुए शब्द उस पर कितने भारी पड़ने वाले हैं। इतना सोच वे मन ही मन रूही के लिए प्रार्थना करने लगता है कि इस शैतान से कोई उसे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला, सुमन सीधा भागते हुए अपने कमरे में आती है और एक चैन की सांस लेती है, फिर शीशे के पास जा खुद को देखने लगती है और अपने गालों पर दांतों के निशान देख धीरज पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये पागल आदमी, जब देखो तब मुझे काटने पर तुले रहते हैं। अगर मेरे बच्चों ने गलती से भी ये निशान देख लिए होते तो मेरे बारे में क्या सोचते, पर इन्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं रहती है। इतना बोल वे बड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर मेकअप लगा अपने निशानों को छिपाने लगती है। मेकअप करने के बाद जब वे देखती हैं कि उनके चेहरे पर अब कोई भी निशान नहीं दिख रहा, तब जाकर वे चैन की सांस लेती हैं और फिर कमरे से निकल अपने बेटी के रूम की तरफ चली जाती हैं। जब वे अपनी बेटी के रूम में पहुंचती हैं तो वे देखती हैं कि उनकी बेटी अजीब तरीके से सोई हुई है। उसका एक पैर नीचे और दूसरा पैर बेड पर था। कंबल बेड से नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और वे तकिए में अपना मुंह छिपाए सो रही है। सुमन ये सब देख अपना सर ना में हिला देती हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए बोली, परी बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। सुमन जी की आवाज सुन परी की नींद हल्की सी टूट चुकी थी, लेकिन वे फिर भी नहीं उठती क्योंकि ये उसकी मॉम का रोज का ही था। वे हमेशा सुबह सुबह इसी तरह जगाने आ जाया करती थी और उसे चैन से सोने भी नहीं देती थी। वहीं सुमन जी भी परी की हरकत अच्छे से जानती थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी उनकी सारी बातें सुन रही है, पर उठ नहीं रही, इसलिए वे परी से बोली, परी बेटा अपना नाटक बंद कर, तुझे अपने भाई से नहीं मिलना क्या? इतने सालों बाद वे यहाँ पर आ रहा है, इसलिए बेटा आज तो जल्दी उठ जा। अपनी मॉम की बात सुनकर परी उसी तरह सोते हुए नींद भरी आवाज में बोली, मॉम आपने मुझे पागल समझा है, जो मैं खुद शैतान से मिलने चली जाऊं, मुझे अभी भाई से नहीं मिलना, मैं बाद में मिल लूंगी। इतना बोल वे फिर से सो जाती है। वहीं सुमन जो परी को प्यार से जगाने के बारे में सोच रही थी, पर कहते हैं ना लाटों के भूत बातों से नहीं मानते, वही हाल परी का भी था। इसलिए सुमन थोड़े गुस्से में परी को देखती है, तभी उनकी नजर वहीं पड़े टेबल के ऊपर पानी के भरे जग पर जाती है, जिसे देख वे उस टेबल के पास जा पानी के भरे जग को उठाती है और एक झटके में उस पानी के भरे जग का सारा पानी परी के मुंह पर डाल देती है। वहीं परी जो अब तक आराम से मजे में सो रही थी, अपने ऊपर पानी पड़ता हुआ पाती हैं, तो एक झटके में चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती हैं और अपनी मॉम को गुस्से में देखने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में
रूही बिना सोचे समझे एक के बाद एक चीजें बोलती चली गई, पर इस बात के अनजान कि उसकी कही गई बातों का रुद्र पर क्या असर हो रहा है। रुद्र जैसे जैसे रूही की सारी बातों को सुनता है, रुद्र का चेहरा भयानक होता चला जाता है।